तलवार लेकर के फिर सुग्रीव का सामना किया। सुग्रीव जी ने एक शिला उठा के उसके ऊपर पटकी, अब वो शिला विरूपाक्ष के ऊपर पड़ी तो राक्षस ने क्या किया कि तलवार के द्वारा उस शिला को यूं रोक दिया। रोक देने से फिर जो है वो शिला टूट गई, और शिला टूटने के बाद उसने तलवार का प्रहार किया सुग्रीव जी पर। सुग्रीव जी यूं चक्कर खाए, जोर से चक्कर खा करके जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने के बाद थोड़ी देर में सुग्रीव जी को होश आया, और होश आने के बाद सुग्रीव जी ने विरूपाक्ष का गला पकड़ लिया। गला पकड़कर उसके जोर से मुक्का लगाया, और मुक्का लगाने के बाद में वो विरूपाक्ष था उसके भी चोट पहुंची। फिर जो है उसने फिर तलवार चलाई, उस तलवार से सुग्रीव जी बच गए, बच करके। और फिर सुग्रीव जी ने अंत में उसके मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ की लगाई, उस थप्पड़ से उसका मुंह फिर गया है। ये ना अपने इतना ही होता है, इतने एकदम यूं चारों तरफ हो गया, एकदम यहाँ के सब बोल्टू वगैरह सब ढीले हो गए, वो घूमने लग गया, और विरूपाक्ष था वो विरूपाक्ष होकर के वहीं पर पूरा हो गया। विवृत नैन आंखें फट गई, मुंह फट गया, विरूपाक्ष नाम इसका सार्थक हो गया। तथा तु तौ संयति संप्रयुक्तौ तरस्विनौ वानर राक्षसानां बलार्णवौ सुस्वनतुश्च भीमौ महार्णवौ द्वौ विव भिन्न सेतु। दोनों कम नहीं थे, दोनों वेग में भी बड़े तीक्ष्ण थे। बंदरों के अंदर सुग्रीव कम नहीं था, राक्षसों के अंदर विरूपाक्ष कम नहीं था। दोनों ही बल के सागर थे, दोनों ही आवाज में भी बड़ी उनकी तीक्ष्ण आवाज थी, भरी हुई आवाज थी, और दोनों ही ऐसा लगता था कि जैसे कोई सेतु हो, कोई पुल हो, ऐसा लगने लगा। जब वो विरूपाक्ष मर गया तब भाई उस समय बंदरों की सेना के अंदर बड़ा हर्ष हो गया, और राक्षसों की जो सेना थी उसमें बहुत बड़ा भारी शोक हो गया। अब इसके मरने के बाद में, विरूपाक्ष के मरने के बाद में रावण का क्रोध और दुगना हो गया। रावण ने उस समय में अपने सेना को क्षीण होता हुआ देखा तो वो महोदर से कहने लगा, महोदर विरूपाक्ष तो मर गया, लेकिन अब तो मेरी आशा तेरे पर टिकी हुई है, जल्दी करो और तुम अपने मरे हुए पितरों को पिंड देने के लिए जितना जल्दी और शीघ्र हो सके बल के साथ बांदरी सेना का वध करो, इसी से ही तुम्हारे पितरों का पिंड दान होगा। ऐसा कह करके और महोदर को बिचारे को भेज दिया। अब महोदर ने अपने हाथ में तलवार ले ली, और महोदर ने बड़ा वहां पर युद्ध दिखाया। बानर लोग देखते हैं कि ये राक्षस सेना, इनमें एक से एक बढ़कर वीर हैं, मरेंगे कब तक, इनका अंत आएगा पता नहीं। बांदरों ने शिला ले ली, शिला लेकर के वो भी तैयार हो गए। महोदर ने देखा कि विरूपाक्ष को सुग्रीव ने मारा है, तो सुग्रीव है थका हुआ, इसको कम से कम एक को तो मारो। राम की सेना के अंदर एक भी सेनापति नहीं मरा, एक भी युद्धपति नहीं मरा, बड़ों में एक भी नहीं मरा, और सुग्रीव कई देर से लड़ाई कर रहा है, अब ये थका हुआ है, क्योंकि सुग्रीव के बराबर का था विरूपाक्ष, तो वो सुग्रीव के सामने ही आया। बांदरों को डराता, धमकाता, पीछा छोड़ता, आता जाता, अंत में वो महोदर था, वो सुग्रीव के सामने आया। सुग्रीव ने एक शिला ली, शिला लेकर के उसके ऊपर प्रहार किया, तो महोदर ने उसको कुछ नहीं समझा, उस शिला को बाणों से तोड़ दिया। और फिर उसके बाद में सुग्रीव क्रोध से मूर्छित होकर के साल वृक्ष को उखाड़ के आया, और उखाड़ करके उस साल वृक्ष से उसके ऊपर प्रहार किया, तो साल वृक्ष का प्रहार करने से वो जमीन पर गिर गया, और गिरते ही वो वापिस जल्दी उठ गया। उठ करके अपने हाथ में उसने घोटा ले लिया, और घोटा जब दिखाता हुआ आया तो भाई इधर सुग्रीव जी ने उसको उठा के पटक करके और वो घोटा खोस लिया, परिग लेकर के, और उसके घोड़ों को मारा, सब घोड़े वहां पर मर गए। जब उसके घोड़ों को मार दिया तब वो राक्षस महोदर अपने हाथ में गदा लेकर के आया। अब सुग्रीव के हाथ में तो है परिग और उसके हाथ में गदा, दोनों आपस में खूब उससे युद्ध करने लगे, काट कट की आवाज आने लगी। वो रजनीचर महारथ वो महोदर वो गदा को लेकर के सुग्रीव के ऊपर जोर से उसने फेंकी। सुग्रीव के ऊपर फेंकने पर सुग्रीव ने भी अपने पास आई हुई गदा को परिख से यूं फेंक दिया उसको, तो गदा के टुकड़े हो गए, गदा वहीं पर समाप्त हो गई। तब वो राक्षस राज महोदर अपने हाथ में मूसल लेकर के आया, सोने का बना हुआ मूसल, वो मूसल लेकर के उस मूसल से उसके ऊपर प्रहार किया और उस मूसल से ततो भिन्न प्रहरणौ मुष्टिभ्याम तौ समीयतु। तब जो है वो मूसल से उसके ऊपर प्रहार किया, मूसल को भी उन्होंने तोड़ दिया। अब मूसल के टूट जाने के बाद दोनों आपस में मुक्के से लड़ने लगे और मुक्के से लड़ने लगे, एक दूसरे को पटकने लगे। अब क्या तलैश्चानुन्य मासाद्य पेदतुष्ट मही तले, जमीन पर गिरते हैं, खड़े होते हैं, वो उसको भुजा पकड़ता है, वो उसकी भुजा पकड़ता है, वो उसको नीचे पटक देता है, नीचे पड़ा वाला वो उसके ऊपर पटकता है, फिर आपस में मुक्के मारते हैं। ऐसे एक दूसरे का अवकाश देखकर एक दूसरे के साथ बाहु युद्ध करते हैं। इतने में ही वो महोदर एक तलवार लेकर आता है, तलवार लेकर आकर के सुग्रीव को प्रहार करना चाहता है। सुग्रीव जी महाखड्ग ले आते हैं, बड़ी तलवार ले आते हैं और फिर तलवारों से दोनों में युद्ध होता है। उछल उछल के तलवार लगाते हैं, उत्पलुत्ति उत्पलुत्ति उछल उछल करके। वो देखता है कि मैं प्रहार कर दूं, उसने वो बचाव करता है तो वो उसके नीचे पैर में लगाना चाहता है। दक्षिणम मंडलम चौबहु सतुर्णम संपरीयतु। इस प्रकार से ये तलवार का मंडलाकार हो गया, एक दूसरे को जीतने की इच्छा करना चाहते हैं। अंत में भाई सुग्रीव जी महाराज ने अपना जो तलवार था वो तलवार लेकर मौका देख करके और महोदर के सिर के ऊपर जोर से उसका प्रहार किया, वो वहीं पर उसके दो टुकड़े हो गए। और क्या बताएं, दशग्रीव तो क्रोधित होने लग गया, राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। चुक्रोध च दशग्रीवो बभु हृष्टश्च राघव, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बानर तो राक्षस लोग थे, वो हूं करके वहां पर रोने लग गए। महोदरम तो विनिपात्य भूमौ, महोदरम तम विनिपात्य भूमौ महागिरे कीर्ण मिवैक देशम सूर्यात्मजस्तत्र रराज लक्ष्म्या सूर्य स्वतेजो भीरिवा प्रदृश्य। सूर्य पुत्र थे सुग्रीव, इस कारण से उनकी तो शोभा बढ़ती गई। और महोदर यहाँ पर पड़ा हुआ था, वो महोदर का नाम महोदर जब वैसा था, वैसे पेट भी मोटा माटा वाह करके वहीं पर पड़ा गया। वो आज बानर राज सुग्रीव की बड़ी विजय हुई। देवता लोग भी बानर राज सुग्रीव की महिमा कहते कहते वे वहां देखो सूर्य को बधाई देने लगे। सूर्य को कहने लगे, वाह सूर्य भगवान, आपका पुत्र ये सुग्रीव कितनी कितना कितना पराक्रम दिखाता है। अब जो है जब महोदर भी मर गया, विरूपाक्ष मर गया, तो अब इनके पास में अब महापार्श्व रहा। महापार्श्व था वो, महापार्श्व देखा कि सुग्रीव पर ही करो आक्रमण अपने, तो वापस वो सुग्रीव पर ही आए। और ये जो सेना थी उसमें बड़ा हलचल पैदा किया उसने। देखो जिस प्रकार से कोई आदमी वृक्ष के ऊपर जाए और वृक्ष को यूं हिलावे तो सब फलों को और वृक्ष पत्तों को तोड़ दे, फलों को तोड़ लेता है, उसी प्रकार से उसने बंदरों को जाकर यूं थोड़ा सा डराया। बंदर तो बेचारे भयभीत हो गए महापार्श्व से। फिर बंदरों के ऊपर उसने बाणों की वर्षा की, बंदरों का मुंह उतर गया। और फिर जो है अंगद को पता चला कि ये सुग्रीव की तरफ ही आएंगे, हमारे चाचा की तरफ ही। अब अंगद अपने हाथ में जो है वृक्ष लिया हुआ वो आया दौड़ा दौड़ा। और वो जो महापार्श्व था वो महापार्श्व अंगद से भिड़ गया। अंगद की और महापार्श्व की आपस में बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। अब देखो कभी तो अंगद उनको पटकते हैं, कभी वो अंगद को पटक देते हैं। तो महापार्श्व था उसके पहले तो रथ को उसको खत्म कर दिया, सारथी वगैरह सब खत्म हो गए। तो उसको कहा तुम पैदल आ जाओ, पैदल पर आए। तो फिर वो घोड़े पर आया तो घोड़े को पूरा कर दिया। अब महापार्श्व और अंगद, अब महापार्श्व के पास में तो बाण थे, अंगद के पास में परिग और शिला और जो है ये वृक्ष थे। अब उसने क्या किया, बहुत से बाणों से तो अंगद के ऊपर प्रहार किया। जामवंत को 3 बाणों से मारा और ऋक्षराज को और गवाक्ष को उसने बहुत से बाणों से मारा महापार्श्व ने। और गवाक्ष और जामवंत जी तो वहां पर बाणों के लगने से घायल होकर के गिर गए, और अंगद जी ने फिर अपने हाथ में घोटा लिया और घोटा लेकर के बड़े क्रुद्ध होकर के अंगद जी महाराज राक्षस राज महापार्श्व से युद्ध करने लगे। दूरस्थितस्य परिघम रवि रश्म समप्रभम। अब वो उसके पास में जो घोटा था वो सूर्य की किरणों के समान बड़ा देदीप्यमान था। द्वाभ्याम भुजाभ्याम प्रक्रिय है, उसने दोनों हाथ से उसको लेकर यूं जोर से उसको घुमाया तो महापार्श्व के मारने के लिए अंगद जी ने यूं फेंका। फेंकने से तो भाई उसका धनुष, उसका बाण और उसके कवच और सिर का ऊपर रहने वाला एक और शिरस्त्राण ये सब नीचे गिर गए। बालीपुत्र अंगद फिर जो है उसके कान के पास में आकर के जोर से मुक्का लगाए, मुक्का लगने सारा शरीर हिला, उसका मुकुट वगैरह वो भी गिर गया। फिर उन्होंने एक घोटा उठाया और फिर दोनों की बड़ी आपस में लड़ाई हुई। अंत में भाई अपने पिता के समान बड़े पराक्रमी थे अंगद। अंगद उछल करके आए और अपनी मुक्की लेकर के और उस मुक्की से उनके छाती पर जोर से प्रहार किया। यहां मुक्की लगते ही यहां का जो अवयव था सब चूर चूर हो गया, सब हड्डियां टूट गई और यहां खून था वो मुंह में से आने लगा और वहीं पर उसका हृदय फट जाने से वो मर गया। उसके मर जाने के बाद बंदरों ने बहुत उत्साह मनाया, बड़ा उत्साह मनाया और लंका तक वो शब्द गया, सब देवता लोग बड़े आनंदित हो गए। अथेन्द्र शत्रु त्रिदशा लयानाम वनौ कसाम चैव महाप्रणादम श्रुत्वा सरोषम युधिराक्षसेन्द्र पुनश्च युद्धाभिमुखोवत अस्थे। इस प्रकार से भाई ये राक्षस राज रावण अपने ही सामने इन बड़े बड़े पराक्रमियों को मरा हुआ देखा और राक्षसों का महानाद देखा तो राक्षस राज बानर को बड़ा क्रोध आया और अब उसने सोचा कि अब अपने चलो युद्ध करें। अब भाई एक रावण मचा है रावण, इसलिए वो रावण अब युद्ध के लिए बहुत तैयार हो रहा है। और रावण युद्ध के लिए तैयार होगा तो आज बड़ा घमासान युद्ध करेगा वो। तो भाई वाल्मीकि जी महाराज ने मन में इस रामायण को गाया है और इसको लिख करके आप हम सबसे गवाया भी है। वाल्मीकि जी महाराज यदि वाल्मीकि रामायण न लिखते तो कोई रामायण हम लोगों के सामने आती नहीं। सभी ने वाल्मीकि जी को आदर्श मान करके लिखा है। कहावत है कि जो मार्ग को सबसे पहले बनाने वाला होता है वो बड़ा पुण्यवान होता है, क्योंकि उसके बनाए हुए मार्ग से असंख्य प्राणी यात्रा करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने हम लोगों को राम जी की यात्रा करने के लिए बड़ा अच्छा सुगम मार्ग बना के दिया। संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदासस्य है। कालिदास एक बहुत बड़े कवि हुए, उनकी उपमाएं बड़ी विचित्र हैं, परंतु हमारे वाल्मीकि जी महाराज का उनसे भी ऊंचा स्थान माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज कौन थे, क्या थे, यह एक अलग चर्चा का विषय है, परंतु वाल्मीकि रामायण के बड़े उच्च लेखक थे इसमें संदेह नहीं है। वे वाल्मीकि जी महाराज बड़े विचित्र ढंग से वाल्मीकि रामायण लिखते हैं कि रावण आदि का वध वगैरह हो जाता है, उसके बाद रावण के जन्म आदि की भी कथा बोलते हैं। पहले रावण की मृत्यु बताई, उसके बाद रावण का जन्म बताया, क्योंकि ऋषि मुनि एक बार आए थे राम जी के दरबार में तो कहने लगे कि आपने मेघनाद को मारा, लक्ष्मण जी ने बड़ा ऊंचा काम किया। अब वो ऋषि मुनि मेघनाद की बात बताते हैं, रावण की बात बताते हैं। तो वाल्मीकि जी महाराज ने बड़ा अच्छा हूबहू वर्णन किया, प्रकृति का भी वर्णन किया है। तो जैसे वो प्रकृति के एक एक मर्म को जान करके लिखते हैं, जिस देश का वर्णन किया है बिल्कुल यथार्थ किया है। अब इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट लिखेंगे कि लंका के चारों दरवाजों में पश्चिम दरवाजा खास दरवाजा था, जहां रावण खुद युद्ध करता था, वहां राम जी महाराज का मोर्चा लगा हुआ था। माने दरवाजों को बताना, दरवाजों के स्वरूप को बताना, ये तो वही वाल्मीकि जी महाराज का एक विलक्षण ज्ञान है। तो उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने अब राम रावण युद्ध भी बताया, कैसे युद्ध हो रहा है। रावण के तीन बड़े महारथी विरूपाक्ष, महोदर और महापार्श्व, तीन मारे गए। तीन में दो तो सुग्रीव के द्वारा मारे गए, विरूपाक्ष और महोदर। महापार्श्व है वो अंगद के द्वारा मारे गए। अब रावण के पास में कोई सेनापति के रूप में या बहुत बड़ा कोई अतिरथी हो कोई नहीं बचा। वाल्मीकि जी महाराज गाते हैं, लिखते हैं कि विरूपाक्ष के मरने पर जब महोदर और महापार्श्व भी मर गए, तो इस युद्ध भूमि में रावण के मन में भयंकर क्रोध पैदा हुआ। अपने सारथी को उसने निर्देश दिया कि देखो, ये मेरे अमात्य लोग थे, मंत्री लोग थे, ये भी मारे गए। तो अब राम और लक्ष्मण दो ऐसे बचे हैं जिनको मारे बिना मेरा दुख दूर होने वाला नहीं। जिस प्रकार से वृक्ष से फल मिलता है, ऐसे ही राम रूपी वृक्ष को मार देने के बाद मुझे सीता रूपी फल मिलने वाला है। ये सुग्रीव तो उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। सुग्रीव है, जामवंत है, कुमुद है, नल है, विविध है, मैंद है, अंगद है, ये सब उसकी हनुमान वगैरह, ये सब यूं शाखाएं हैं। राम वृक्ष है, वृक्ष, और इस सब वृक्ष के अंदर फल है वो सीता है। तो उस सीता रूपी फल को प्राप्त करने के लिए राम को काटा जाएगा तो सीता रूपी फल मिल जाएगा। वो अतिरथ था रावण, अपने रथ को बड़े तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सारथी को कहा, और सारथी ने बहुत तेजी से रथ बढ़ाया। सारी पृथ्वी चलायमान हो गई और सारे के सारे बानर बड़े घबराए, और रावण ने एक तामस अस्त्र चलाया। तामस अस्त्र, ये तामस अस्त्र क्या था? ये राहु का अस्त्र था, राहु का। जैसे राहु है यूं ग्रस्ता है सूर्य को और चंद्रमा को, ऐसे बाण छोड़ा वो यूं ग्रस्ता चला जाए सब राक्षसों, सब बानरों को। तब उससे सब बंदर बड़े घबरा गए और बंदर इधर उधर दौड़ने लगे, खूब मिट्टी उड़ने लगी। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने वो शस्त्र बनाया था तो कौन उसका मुकाबला करे। ऐसे ऐसे तो रावण के पास बहुत से शस्त्र थे और सैकड़ों सैकड़ों बानरों का वहां ढेर होने लगा। राक्षसराज रावण ने वहां पर बहुत बड़ा उत्पात मचाया। आगे उन्होंने राम जी को देखा अपने भाई के साथ। राम जी को देख करके उसका तो क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। राम जी है वो कमल के समान नेत्र वाले, दीर्घ भुजा वाले, बड़ी बड़ा धनुष रखने वाले। लक्ष्मण जी सहित महातेजस्वी राम जी महाराज वहां खड़े हुए हैं। इधर उधर भगते हुए बंदरों को वो देखते हैं, तो राम जी को देख करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने हाथ में धनुष लिया। राम जी ने भी धनुष ले लिया। धनुष लेकर के राम जी महाराज बड़े वेग से अपने बाण रावण की तरफ फेंकने लगे। एक एक बाण में से सैकड़ों सैकड़ों बाण निकले। जिस प्रकार से राहु सूर्य और चंद्रमा के पास जैसे सुशोभित होता है, ऐसे राम और लक्ष्मण के वहां ये रावण पहुंच गया। पहले वो लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण के ऊपर उसने सैकड़ों बाण डाले। सब बाणों में से आग निकलती थी। लक्ष्मण जी उन बाणों को काटते भी थे लेकिन झेलते भी थे। लक्ष्मण ने भी बहुत बाण छोड़े। रावण ने लक्ष्मण के सब बाणों को काट दिया और फिर एक से तीन से दस बाणों से लक्ष्मण जी के बाणों को पराजित करने के बाद लक्ष्मण को छोड़ करके अब राम जी की तरफ आया। राम को देखा कि राम एक विशाल पर्वत के समान है। क्रोध से लाल नेत्र वाले राम जी को रावण ने खूब अच्छी तरह से देखा। रावण के भी क्रोध चढ़ा हुआ था। रावण के धनुष से निकले हुए बाण राम जी की तरफ बरसात की धारा के समान गिर रहे थे, तो राम जी ने भल्लास्त्र के द्वारा उन सबको काट दिया। भल्लई तीक्ष्णश्चित छेद, तीखे तीखे भल्ल बाणों से उनको समाप्त कर दिया। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। दोनों को ही बड़ी फुर्ती के साथ बाण चलाना आता था, राघव रावण को और रावण राघव को जीतने में जुट गए। एक दूसरे को तीक्ष्ण बाणों से मंडलाकार होते होते वे बड़े वेग से बाण से मारकर जीतना चाहते थे। खूब शरीर से यूं घूमते रहे, घूम घूम करके बाण लगाए। इन दोनों का इस प्रकार से घूमना वगैरह देख करके, दोनों को एक साथ बाण चलाते हुए देखकर लोगों ने सोचा कि यमांतिक निकाशे हो, यमराज और अंतक इन दोनों की लड़ाई हो रही हो, ऐसा लगने लगा। आकाश में बाण बाण हो गए। जिस प्रकार से मेघों में बिजली चमकती है, इसी प्रकार से ये बाण आकाश में चमक रहे थे। आकाश तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिखता था, जैसे कोई झरोखों में से देखा जाए वैसा थोड़ा थोड़ा आकाश दिखता था। खूब जोर से आकाश से वहां पर वृष्टि होने लगी। आकाश में अंधकार सा होने लगा। और जब गते अस्तम तपने चापी, जब सूर्य का प्रताप कम हुआ और सूर्य छिपने से लगे, ऐसा लोगों को मालूम दिया, तो दोनों के दोनों मेघ के समान आपस में बाण लेकर के वैसे ही लड़ते हैं जैसे वृत्रासुर और इंद्र लड़ते हों। दोनों एक दूसरे के कब्जे में भी नहीं आ रहे हैं। युद्ध में दोनों बड़े विशारद हैं, अस्त्रों को जानने वाले हैं। उभौ येन व्रजतस्तेन तेन शिरोर्मय, वास्तव में दोनों ही सागर के समान ऐसे लड़ते हैं जिस प्रकार से वायु के द्वारा सागर में तरंगे चलती हैं, उसी प्रकार से उनके बाणों के द्वारा यूं बाण यूं आते हैं जाते हैं तो जैसे कोई तरंगे चलती हो ऐसा मालूम लगने लगा। सारे संसार को रुलाने वाला ये रावण राम जी के ऊपर खूब बाण बरसाए, रौद्र बाण बरसाए, पर राम जी में न व्यव्यात है, राम जी विचलित नहीं हुए। देखो ये तो एक राम जी की बड़ी विशेषता रहेगी, कितने ही बाण छोड़े जाएंगे राम जी व्यथित नहीं होंगे और कंपित नहीं होंगे। राम जी महाराज के ऊपर उसने बाण बरसाए तो राम जी महाराज ने भी रौद्रास्त्र का मंत्र जपते हुए प्रयोग किया। वो रौद्रास्त्र था वो ऐसा भयंकर अस्त्र जिसमें से कई शस्त्र निकले। राम जी ने जब वो अस्त्र छोड़ा तो राक्षस राज का जो धनुष था और बाण था वो कट हो गया। राक्षस राज का कवच था वो अवध्य था। तो राक्षस राज के भी कवचे पतिता शिरा, कवच के अंदर बाण तो लगे लेकिन कवच टूटा नहीं, पर उसके व्यथा नहीं हुई। अब राम तो थे यूं ही और राक्षस था वो रथ के ऊपर था, राम जी के ललाट के ऊपर उसने बाण की वर्षा की और फिर राम जी महाराज ने भी उसके ऊपर बाणों की वर्षा की। वे बाण रावण के प्रतिकूल होने लगे, रावण के शरीर में जगह जगह वो बाण लगने लगे। तब रावण ने आसुर अस्त्र लिया, एक आसुर अस्त्र लिया जिसमें से कई तो सिंह के मुख वाले और कई व्याघ्र के मुख वाले, कई कौवे के मुख वाले, कई गीध के मुख वाले, कई बाज मुख वाले, कई श्याल मुख वाले, कई इहामृग मुख वाले, ऐसे भयानक भयानक मुख वाले बाण निकले हूं। अब बाण है आगे सिंह का मुख है, बाण है आगे गीध का सा है, ऐसे उनको देखा। और वे सब कोई तो वराह मुख वाले हैं, कोई कुत्ते के मुख वाले हैं, कोई मगरमच्छ जैसे मुख वाले हैं, कोई सांप मुख वाले हैं, ऐसे एक साथ बाण रावण ने माया के द्वारा राम जी के ऊपर छोड़ा। इन सब को देख करके बानर लोग बहुत भयभीत हो गए। राम जी महाराज ने देखा कि ओहो ये तो आसुरास्त्र भेजा है इसने, असुरों का जो अस्त्र है। राम जी ने उसी समय में पावकास्त्र के द्वारा उन सबको एक क्षण में नष्ट कर दिया। राम जी के बाण थे वो अग्नि के समान मुख वाले, सूर्य के जैसे मुख वाले, अर्ध चंद्राकार या चंद्रमा के समान मुख वाले, उल्का के मुख वाले, ग्रह नक्षत्र जैसे रंग वाले, ये बाण जाकर के और रावण के बाणों को समाप्त कर देते थे। और वे रावण के शस्त्र आकाश में विलीन हो गए तो बंदर लोग बड़े खुश हो गए। राम का ये पराक्रम देखकर बंदरों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और सुग्रीव जी भी बहुत आनंदित हो गए। राम जी महाराज ने इस प्रकार से रावण के ऊपर अपने शस्त्रों का ही प्रभाव छोड़ा और बानर लोग आनंदित हो रहे हैं। रावण देखता है कि मेरे शस्त्र काम नहीं करते तो वो दुगना क्रोध में आकर के राक्षस राज मय के द्वारा बनाया हुआ रौद्रास्त्र था वो रौद्रास्त्र दिया। उत्सृष्टम रावणो भीमम राघवाय प्रचक्रमे, और उसने रावण ने रौद्रास्त्र था वो राम जी की तरफ छोड़ा। और फिर शूल है, गदाए है, मुसल है, ये सब उसमें से निकलने लगे। मुदगर है, कूट पाश है, कूट है, पाश है और वज्राघात करने वाले से ऐसे तीक्ष्ण तीक्ष्ण शस्त्र उसमें से निकलने लगे रावण के छोड़ने पर। राम जी महाराज ने एक गंधर्वास्त्र लिया, उस गंधर्वास्त्र के द्वारा राम जी ने उसके अस्त्रों को काट दिया। और काटने के बाद फिर रावण ने सौरास्त्र लिया, सूर्य वाला अस्त्र लिया, उस अस्त्र से कई चक्र निकलने लगे। देवी पिमान चक्र थे वो चक्र आ करके और रावण के धनुष से निकले बड़े प्रकाशमान थे। वे राम जी की तरफ आए तो राम जी ने अपने शस्त्र के द्वारा उसको सूर्यास्त्र को भी काट दिया। देखो ये राम का और रावण का युद्ध हो रहा था, इस युद्ध को सब लोग देख रहे थे। राक्षसराज रावण राम के द्वारा प्रहारित किए 10 बाणों से तदस्त्रं च हतं दृष्ट्वा, राम के शस्त्र से जब रावण का शस्त्र नष्ट हो गया तब वो बहुत क्रोधित होकर के 10 बाण उसने राम जी की तरफ फेंके और वो बाण राम जी के शरीर में लगे पर राम जी कंपित नहीं हुए और राघवस्तु सुसंक्रुद्ध है। और राघव उस समय में बहुत क्रुद्ध होकर के रावण के ऊपर खूब बाणों की वर्षा करने लगे तो लक्ष्मण जी से ये देखा नहीं गया। लक्ष्मण जी एकदम बीच में कूद पड़े राम और रावण के बीच में और अकस्मात लक्ष्मण जी ने आकर 7 बाण रावण के मारे। उन 7 बाणों में उसका ध्वज था, वो ध्वज खत्म हो गया, झंडा।